نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره البقره ايت نمبر 30-39 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه یہاں سے شروع ہو کر ہمارا سبق جو ہے ہم فیھا خالدون پہ اس سے پہلے کہ ہم آیتوں پہ چلیں براہ راست کچھ باتیں مرکزی خیال ہر سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے تھیم ہوتا ہے جس کو انگلش میں آپ کہیں گے اگر ہم کسی بھی سبق کا تھیم سمجھ گئے تو ہمیں اس سبق میں سے بہت کچھ لینا آسان ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہر ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات ابھرتے ہیں اور ان سوالات پہ نظر رکھنا ان کا جواب پا لینا انسان کو بہت مطمئن کرتا ہے تو چیزیں چند نوٹ کریں گے کہ اس سبق کا بنیادی تھیم کیا ہے اور یہ لیسن ہمارے کن سوالات کا جواب دے گا سب سے پہلے کیا انسان بندروں کی اولاد ہے اس سوال کا جواب ہمیں اپنے آج کے سبق سے ملے گا پھر دوسری چیز اس سبق میں ہمیں دنیاوی علم یعنی اکوائرڈ نالج جو کہ ہمارے بچے اسکولوں کالجوں میں جا کے لیتے ہیں اس کا اور ریولیشن کا علم یعنی علم الوحی کا فرق دکھے گا اور ہم اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ کیا دنیا کا علم نہیں لینا چاہیے اور صرف ایک انسان اپنے آپ کو دین کے علم کے ساتھ رکھے یا اس کا اپوزٹ دونوں چیزوں کا فرق ہم اس میں دیکھیں گے تیسرا اس میں ہمیں فرق پتہ چلے گا تخلیق انسانی کا اصل مقصد کیا تھا یعنی کریشن پلان واٹ واز اللہ کریشن پلان بیہائنڈ یعنی کریٹنگ آدم علیہ السلام اور انسان کو اس سبق میں ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلے گی اور وہ کیا کہ انسان نے آدم علیہ السلام سے ورثے میں کیا کیا کریکٹرسٹکس کیا کیا خوبیاں پائیں اور اس سب سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ آئے گی اور وہ کیا ہے کہ انسان کو دوسری مخلوقات پہ فوقیت کیوں دی گئی اور ایک اور چیز اس میں ہم دیکھیں گے اور وہ ہے امتحان تین امتحانات کا تذکرہ ہے اور تینوں کے ریزلٹس ہیں تھوڑی سی بات کرتی ہوں پارے کے ساتھ پیچھے چلاتے ہوئے اس پارے اس لیسن کے مرکزی خیال کی ہم سب نے ہدایت کی دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی کہا ذالک الکتاب لا ریب فی یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ ختم ہو گئی بات کون ہوتے ہیں ہدایت والے متقی لوگ الذین یؤمنون سے لے کر اولئک ہم المفلحون تک بات اور واضح ہو گئی کون بالکل انکاری ہیں ان الذین کفروا سے عذاب عظیم تک کون بیچ کے ڈاماڈول ہے جو سمجھتے تو ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں ہم نے دین بھی رکھا ہوا ہے دنیا بھی رکھی ہے لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ہم نے پڑھ لیا 21 آیت سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہم نے چوتھے گروہ کا تذکرہ پڑھ لیا جس کو فاسق کہتے ہیں یہاں پہ گویا کے چار ڈفرینٹ اینگلز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھ دیے کہ تم ہیومن ہو تم انسان ہو تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو پہچانو تو ان چار میں سے ایک کو پہچانو اب ایک کوشچن ہے انسان کے ذہن میں ہر بچے کے ذہن میں بھی آتا ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ سے کیے ہوں گے آج کے بچے کو تو چوں کہ ڈارونزم پڑھا دی گئی تو اس کا سوال ذرا فرق انداز کا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ انسان کے اندر یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں میرا آغاز کیا تھا میں ماضی میں کیا تھا آپ دیکھیں کہ اپنے ماضی کا ذکر سننا بہت اچھا لگتا ہے کبھی آپ نے اپنی فیملیز میں بیٹھ کر فیملی کی باتیں کی ہیں ماضی کے قصے کئی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں ہمیں اپنے خاندان میں بیٹھ کے مزہ کیوں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم پچھلے وہ پھول کھول رہے ہوتے ہیں نا اسی طرح ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ آخر اس کی اصل کیا ہے یہ سوال شروع سے ذہنوں میں تھا لیکن ایک شخص جو پریسٹ تھا ریلیجس تھا اور سائنٹسٹ بھی تھا ڈارون اس کا نام تھا اس نے اپنے دور میں یہ ڈسکور کیا اپنے زوم میں نیت بری نہیں تھی کیونکہ ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں بعد میں وہ کبھی پروو ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایولیوشن کیا ہوتا ہے سمپل ٹو کمپلیکس ایک سیل یونی سیل پھر ملٹی سیل پھر ہوتے ہوتے اور بڑے بڑے ہوتے ہوئے انسان وہ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں بندر تھا پھر ایوالو ہوا ریولیوشن کی سطح سے گزرتے ہوئے پھر ایک وقت آیا کہ بندر سے بڑھتے بڑھتے یہ انسان بن گیا آج آپ نے ایک جملہ بھی بڑا غلط قسم کا سنا ہوگا اور اکثر لوگ غلط فہمی میں بول دیتے کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے ह्यूमन इज़ अ एनिमल, सोशल एनिमल, ये इंसान की तौहीन है। अल्लाह ताला इस सबक में हमें बताते हैं कि इंसान बंदरों की औलाद नहीं है, यानी हमारे बाप दादा बंदर नहीं थे। इस सबक से आपको मिलेगा, और ये किस्सा कुरान पाक में 7 दफ़ा आया है, आदम और इब्लीस का किस्सा इसको बोलते हैं। मज़े की बात देखिए, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, कि जो आज हम पढ़ने लगे हैं आयत 21 से 39, हमारे सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, लेकिन तरतीब नज़ूल रेवोल्यूशन का ऑर्डर देखे ना, तो ये सबसे आखिरी था। वजह इसकी साफ जाहिर है, कोई बता सकता है कि ये सूरत मदनी है? 6 दफ़ा ये किस्सा मक्की सूरतों में आया है, गोया के मदीना आने से पहले पहले 6 दफ़ा ये किस्सा मक्का वालों के सामने दोहरा दिया गया था कि देखो तुम इस दुनिया में जो भेजे गए हो, एक पीछे मकसद है। वमा खलकन समावाती वर्द इल्ला बिलहक, अल्लाह ताला सूरह स्वात में भी कहते हैं कि हमने इस दुनिया को मकसद के साथ पैदा किया। अब सवाल पैदा होता है कि डार्विन ने ये जो थेरी दी थी कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, इसको इतनी शोहरत कैसे मिल गई? जहन में आते हैं क्वेश्चंस, बहुत मशहूर है। आपको होता है कि लोग आज इसमें PhD करते हैं, थीसिस देते हैं। और दुख की बात समझ ले, ये तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत रिलीजियस था, प्रीस्ट था डार्विन, लेकिन जब उसने ये थेरी पेश की तो उसके बाद वो मुनकरे खुदा होके मरा, यानी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, उसका वो नुक्ता नज़र बिल्कुल गलत था। आज से कुछ साल पहले अब ये साबित भी हो गया कि ये सिर्फ फौजरी थी। ये सारी बातें आपको मैं 8वें पारे के शुरू में भी इंशाल्लाह सुनाऊंगी, जहां ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल की बात होगी। पिछले साल मैंने वहां जाके बहुत डिटेल से बात की थी। लेकिन उन्होंने ये साबित क्यों करना चाहिए, इस वक्त इस पर गौर कर ले कि क्या फ़र्क क्या पड़ता है इंसान को बंदर की औलाद कह दें। तो यहाँ समझ लीजिए, एक दफ़ा आप मान लें कि इंसान जानवर की औलाद है, तो फिर हम इंसानों से वो सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे जो जानवर करते हैं। मसलन जानवर कपड़े नहीं पहनते, तो न्यूडिटी को रिवाज दे दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि जानवरों में फ्री सेक्स होती है, तो तुम एक दफ़ा मान जाओ बंदरों की औलाद हो, तो तुम्हें फ्री सेक्स की इजाज़त देते। फिर बच्चियाँ ये पूछती हैं, क्या आई एम इज़ टू बैड इफ आई एम अ गे और इफ आई एम अ लेसबियन, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स माई बॉडी। यानी एक आलिम से एक लड़की, यंग बच्ची, 30 ईयर्स की बच्ची, मुसलमान बच्ची सवाल करती है कि इफ आई डू दीज थिंग्स सो दैट मीन आई एम सो बैड, क्या ये बहुत बुरी बात है कि मैं अपने जिस्म से खेलूँ, इट्स माई बॉडी। ये एक आलिम से पूछ रही है। ये सवाल क्यों हमारी आज नस्लों को दिए? आज आपको यहाँ पता चलेगा कि इस वक्त हमारी जनरेशन किन फितनों में पल रही हैं, और जिसके पीछे आज हम मरे जाते हैं, और 15, 20, 20, 30, 30 साल तक पढ़ने के बाद भी तसल्लियाँ नहीं होती, फिर भी कहते हैं कुछ और रिफ्रेशिंग कोर्सेज हो जाए ताकि पे स्केल बढ़ जाए। उन्होंने इस डार्विनिज्म थ्योरी के थ्रू हमारी नस्लों को ट्रैप किया। तीसरी चीज़ आप देखिए कि जानवरों की खूबी क्या होती है, कि वो किसी हद तक अपने बच्चों की टेक केयर तो करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखते। आपने देखा है ना कि जानवर कभी कोई अपनी बूढ़ी माँ बिल्ली को नहीं लेके बैठा होगा, छोटी बिल्ली बच्चों को लेके बैठी होती है। वहाँ से आज दुनिया में ये निज़ाम कर दिया कि यस 18 साल तक अपने बच्चों को पालो, उसके बाद को जाओ। और फिर ये सोच दे दी गई कि भाई देखो अगर तुम अपने घर से नहीं जाते तो फिर हम तुम्हें निकालेंगे। एक हमारी कोई साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक अपनी नेबर से पूछा कि तुम लोगों का हौसला कैसे बढ़ता है, 17-18 साल का बच्चा या बच्ची दोनों को अब ये खुद सोच रहे हैं कि जाओ भाई अपना ढूंढो घर, जाओ ये वो। तो कहती हमारी अपनी आज़ादी में खलल पड़ता है। अब ये भी यंग दो टू मच यंग हो गए, अब मैं कुछ करती हूँ तो फिर मुझे ज़रा लगता है कि मेरे बच्चों के सामने मैं रिलैक्स नहीं हूँ। और एक ने तो यहाँ तक हद कर दी कि अगर मेरी 18 साल की बच्ची मेरे घर में रहती तो मुझे नहीं पता कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा ही शौहर है या इनका। देखिए जैसे मुसलमानों के अंदर डिफरेंट लेवल है ना, इनमें भी है। कल भी बात हुई थी ना जैसे फासिक में, कि हर काफिर फासिक नहीं होता, कई बड़े लिबरल है, कई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप पे है, वो अपने बूढ़ों को भी साथ रखते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। तो आप कह लीजिए कि इस डार्विनिज्म ने इंसानियत को डस लिया। पीछे हमने बात की फासिक होने की, अल्लज़ीना यनकुज़ून से लेके अहद और फसाद की। आज हमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल में, यानी इससे कोई मुल्क नहीं मुराद, सोच मुराद है, पूरी दुनिया के ग्लोब के बच्चों को उन्होंने जकड़ा हुआ है। ये जो वेस्टर्नाइज हो गया ना इंसान, इसके पीछे डार्विन का बहुत बड़ा हाथ है। और आप मुझे ये बताएं कितने लोग हैं आज फर्स्ट टाइम ये बातें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। जी मुझे यही पता था, कसीर है ना। आप बच्चियों ने डार्विनिज्म का नाम सुना? बचपन से ये बच्चे पढ़ते हैं, ये हम भोले भाले माँ बाप जो है ना, हम नहीं पढ़े हुए ना, तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, और इतनी फोर्स्ड इस पे बातें, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, आप इसको पढ़ के देखे जाके हैरान हो जाएंगे कि असल में इसमें पीछे सिर्फ हमारी मुस्लिम मुस्लिम तो नहीं, अब तो सारे ही है, यानी ट्रैप करने के लिए कि एक दफ़ा इनको इंसानियत के दर्जे से गिरा के नीचे फेंको। अल्लाह ताला कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जानवरों से नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया में फ्री सेक्स और इंटरमिंगल होने और सिर्फ अपने नफ्स के तकाजे पैदा करने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो वो जब के आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये कब हुआ? आप अपने जहन में एक नक्शा बना लीजिए, मैं थोड़ा सा जहन को पीछे से लेके चलने की आदी हूँ ताकि आप लोगों को बात समझना भी आसान हो। सबसे पहले तो आप विजुलाइज करें, अल्लाह सुबहाना ताला मौजूद है, फरिश्ते मौजूद हैं। ये कब हुआ था? इस कायनात के बनने के बहुत बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने ये कायनात बनाई, सब कुछ जो सूरज चांद सितारे फल फूल आपको मुझे इधर दिखता है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने लगा दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो बाशऊर किस्म की मखलूकात है ना, उसमें जिन्नों को भेजा था दुनिया में, ठीक है? जिन इंसान के ऑपोजिट पे आता है, आपको लफ्ज़ वज़ाहत में भी बताया गया था, छुपी हुई चीज़ है। अब जिन्नों को अल्लाह ताला ने चॉइस दी, इसके अलावा जितनी मखलूकात है ना, कीड़े मकोड़ों से लेकर फरिश्तों को ले लीजिए, पहाड़ों दरियाओं को, ये सब भी मखलूकात है, लेकिन इनके पास फ्री विल नहीं है। ये आज के सबक से आपको फ्री विल का फर्क भी पता चलेगा, ठीक है? इन सब को अल्लाह ताला ने फोर्स्ड ओबीडियंस ही सिखाई। पहाड़ों को कहा खड़े हो जाओ, खड़े, सूरज से कहा घूमो वो घूम रहा है, चांद से कहा घूमो घूम गया, लेट जाओ पानी को कहा बहते रहो बहते जाओ, जमीन बिछी है, ये सब बाय फोर्स्ड सबमिशन कर रहे हैं। जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, उसमें सबसे पहली मखलूक जो है वो जिन थे। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं थी, रिवायात में आता है, ये सारी बातें हमें बनी इसराइली रिवायात से ज़्यादा मिलती हैं कि आसमान की जगह पे काले रंग का धुआं था, फॉगी था, लेकिन जिन्नात एक अलग मखलूक है, जहाँ इसका जिक्र आएगा कसरत से फिर बात करूँगी, वहाँ आपको जिन्नों की कहानियाँ भी सुनाएंगे इसमें इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि वो चूंकि स्ट्रांग थे, अल्लाह ने दुनिया को इतना रेनोवेटेड नहीं रखा लेकिन बना दिया। जिन्नों ने दुनिया में आने के बाद खूब उधम मचाया, क्योंकि जहाँ इख्तियार होता है वहाँ उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। किसी को आप अथॉरिटी दे के देखिए, सारे रूल्स ही वहाँ से टूटने लग जाएंगे, दूसरे तो 10 दफ़ा मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अथॉरिटी का एक बड़ा नशा होता है। अब हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और कहा कि जाके जिन्नों को मारो, ख़त्म करो इन, दुनिया को इनसे पाक करो। ज़मीन के अंदर से इस तरह से आप देखिए कि जैसे बीच के जो लिविंग एरियाज होते हैं ना, जैसे इस वक्त आज खुशकी के, फरिश्तों ने जिन्नों को भगाया मारा, जिन कहाँ चले गए? पानियों में चले गए, ओशंस बीचेस। ये जो आज बीचेस इतने न्यूड है ना, उसकी वजह यह है कि वहाँ गंदे जिन रहते हैं। शयातीन अपने जो तख्त लगाता है ना शैतान, वो समंदर पे लगाता है, हदीस में आता है कि हर रोज़ शैतान अपना तख्त पानी के किनारे लगाता है, फिर सारे दिन के अपने वर्कर से रिपोर्ट्स लेता है डेली, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या हुआ, फिर अच्छा तुमने ये किया, कत्ल करवाया, तुमने मारा, ठीक है, वेरी गुड। इतने में एक बंदा आता है ऊपर, कहता है कि आपको पता आज मैंने क्या किया, मैंने एक शौहर और बीवी के बीच में लड़ाई करा दी, इतनी हुई कि घर टूट गया। हदीस में आता है कि शैतान अपनी जगह से उठ के स्टेज से नीचे आके उसको गले लगाता है और उसको कहता है असल काम तो तूने किया, क्योंकि उसको पता है कि जिस सोसाइटी में फैमिली सेटअप टूटेगा वहाँ फसाद ही फसाद है। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ यही कहानी है, बाद जगह यहाँ तक आता है कि उसको कहा, कहता है कि तू असल में तू मेरा बेटा है, यानी जो प्लान मैं लेके आया था ना उसमें अब रंग तू भर रहा है। अब इन सारे हालात से इंसानियत गुजर चुकी, फरिश्ते खामोश खामोशी से ऑब्जर्व करते थे लेकिन वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। अब अल्लाह ताला का प्लान था कि आदम को भेजे, दूसरी मखलूक साहिब इख्तियार बा इख्तियार है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था। अब ये कैसे कहा था, क्या कहा था, मुझे और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो उस पर गौर करना है जो कि हमें कहा था, ठीक है? क्या कहा था? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब लफ्ज़ी वज़ाहत सारी आप पीछे सुन चुके हैं कि मलक फरिश्ता पैगाम देने वाला, मलकुल मौत, मलक का नाम उर्दू में भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अलूका पैगाम रसाई को कहते हैं, मलक अल्लाम हमजा अकाफ से, बाज़ लोग इसके रूट वर्ड में गलती खाते हैं, बाद लोग मीम लाम अलिफ मीम लाम काफ लिख देते हैं, बाद हमजा लाम काफ लिख देते हैं। तो बहरहाल ये तो लफ्ज़ी वजाहत इतनी अहम नहीं है। फरिश्तों से कहा कि मैं इस ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। लफ्ज़ खलीफा से क्या मुराद है? खा लाम फा, इसकी वजाहत में हम देख चुके हैं, एक इंसान का दूसरे की जगह पे खड़ा होना, नस्ल दर नस्ल यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मानी है। आप देखिए कि एक तो सूरत ये थी कि जितने इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजने हैं सारे इकट्ठे भेज देता और सारे इकट्ठे मर जाते। आप सोच सकते हैं दुनिया का हल क्या होता। आज कब से नस्लें आ रही हैं जा रही हैं, पहले आते हैं फिर वो ख़त्म हो रहे होते हैं तो अगले आते हैं। ऐसे नहीं लगता जैसे नए पत्ते आए तो पुराने झड़ गए, पुराने झड़े तो नए, एक सिस्टम चल रहा है ना, दादा फिर पोता फिर परपोता, चलते चलते सिलसिला चल रहा है। इतना ऑर्डरली अल्लाह सुब्हान तआला ने इस कायनात में इंसानों का इंतज़ाम रखा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो मालथियस को अल्लाह ताला, उसको क्या कहूँ, हिदायत दे, वो तब दुनिया में है ही नहीं, उसने ये रिसोर्सेज पेश कर दिए थे कि दुनिया की आबादी इतनी बढ़ रही है और लोग थोड़े हैं। ये जो फैमिली प्लानिंग का इशू है ये उस शख्स ने शुरू किया, वो भी आपके ही यूरोप से ही था। तो बहरहाल किस्सा मुसरी के ये चंद बड़े बड़े नाम है जिन्होंने आज दुनिया के अंदर फिसक फजूर और जो फहाशी और उरियानी फिलवा दी। जब से फैमिली प्लानिंग शुरू हुई वहां से जिना और बदकारी आम हो गई, फ्री सेक्स आम हो गई, किसी को फिक्र ही नहीं, जो मर्जी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करे उसके बाद अबॉर्ट करवा दे या उससे पहले प्रिकॉशंस ले ले। ये सारे वो बड़े बड़े तागूत हैं जो आज के तागूत हैं।